नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने में मददगार होगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को वर्ष 2023-24 के मुआवजा वितरण में हुई देरी के कारणों की जाँच के आदेश दिए। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज देहरादून में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में हरियाणा की सुरुचि ने स्वर्ण पदक जीता। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाव की सवारी की। प्रधानमंत्री ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पर पूजा भी की। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए कनेक्टिविटी, सुविधाओं और सेवाओं में सुधार करते हुए 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने में मददगार होगी। देहरादून में शीतकालीन यात्रा पर आधारित गीत का पोस्टर विमोचन करते हुए गीत को YouTube पर लॉन्च करने के अवसर पर उन्होंने तीर्थाटन और शीतकालीन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं व पर्यटकों से वर्ष भर उत्तराखंड आकर शीतकालीन प्रवास स्थलों में दर्शन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने गीत की सराहना करते हुए शीतकालीन यात्रा के प्रचार प्रसार और उत्तराखंड की आध्यात्मिक और नैसर्गिक सुंदरता के परिप्रेक्ष्य में इसी प्रयास को प्रासंगिक बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वर्ष 2025 के कैलेंडर और चारधाम यात्रा की जानकारी देने वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाशित कैलेंडर और देश की 7 विभिन्न भाषाओं में तैयार पुस्तिका देश भर के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि चारों धामों के तीर्थ स्थलों पर आधारित कैलेंडर भी यात्रा को बढ़ावा देने में सहायक होगा। पौड़ी गढ़वाल के कोरद्वार स्थित जशोदपुर में बोक्सा जनजाति की महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 50 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद और जिला उद्योग केंद्र की ओर से आयोजित प्रशिक्षण में क्षेत्र की 20 प्रशिक्षणार्थियों ने ऊन से बनी विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुएं बनाई। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सोमनाथ गर्ग ने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
ये कार्यक्रम UHSDC और उद्योग निदेशालय के सौजन्य से यहाँ जिला उद्योग केंद्र ने आयोजित किया, और ये 50 दिन का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में क्रोशेट निटिंग और निटिंग के विषय में डिटेल जानकारी दी गई। इस तरह के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वावलंबी बनाना लोगों को है, स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करना है, और ये कार्यक्रम विशेष रूप से जो जनजाति समुदाय है उसके लिए एक योजना सरकार की है, उसके तहत कराया गया है। और हमारा भरसक प्रयास ये है कि जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ज्यादा से ज्यादा लोग, रादर सभी लोग उसमें से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगें, और विभाग की जो योजनाएं हैं, MSY है, MSY नैनो है, PMEGP है, MSME 2023 है, तो जिस भी योजना का लाभ लेने के लिए सक्षम है व्यक्ति या जिस स्तर का कार्य करना चाहता है, हमारे पास हर स्तर का कार्य करने के लिए हर स्तर की योजना उपलब्ध है।
प्रशिक्षणार्थी सुषमा ने बताया कि उन्हें यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। वह भविष्य में इसी क्षेत्र में स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।
इस कार्यक्रम में हमने जैसे कि बेबी डॉल बनाए हैं, स्वेटर बनाई है, जुराबे बनाई है और फ्लावर पॉट बनाए हैं, काफी कुछ हमने बनाए हैं, और हमको मतलब बना के बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो हमें कुछ आता नहीं था, काफी कुछ सीखा हमने यहाँ पे आके, और हम चाहते हैं कि हाँ जी आगे भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि सभी महिलाओं को खुद पर मतलब आत्मनिर्भर बन सके सभी महिलाएं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को वर्ष 2023-24 के मुआवजा वितरण में हुई देरी के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। देहरादून में विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों को फसल बीमा भुगतान में हो रही देरी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने फसल बीमा भुगतान में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। कृषि मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में इस प्रकार की समस्या न हो। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आज देहरादून में खेले गए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में हरियाणा की सुरुचि ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में हरियाणा की पलक ने रजत पदक और पंजाब की कौर बराड़ एस ने कांस्य पदक जीता। इस बीच आज विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रदेश में वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों और छात्रों को वनाग्नि के प्रति जागरूक करने के लिए गांवों और स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज सबदरखाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं स्वयं पवन नेगी ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को जंगलों में लगने वाली आग के खतरों, इसके प्रभावों और इसे रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी।
ये आज हमारा जो वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह जो हम वीक मनाते हैं 1 से 7 फरवरी, उसके तहत हमने आज वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया जीएससी सफदरखाल में, जिसमें हमने बच्चों को ये जानकारी दी कि जो वनाग्नि है उसके क्या दुष्प्रभाव हैं और अगर आपके क्षेत्र में वनाग्नि की घटना होती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, आपने किसको इन्फॉर्म करना है और अगर आपको बुझाने का मौका मिलता है तो किस तरीके से आपने आपको बुझाना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चों का काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का है और मैं बधाई देता हूँ जो यहाँ के प्राचार्य महोदय हैं और जो पूरा स्टाफ यहाँ का है, बहुत अच्छे से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, तो काफी अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा, हर क्षेत्र में जागरूक बच्चे यहाँ पर लग रहे हैं।
छात्रा सृष्टि ने बताया कि उन्हें वनाग्नि और वनों को आग से बचाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
कि आज हमारे यहाँ पर पौड़ी से वन विभाग की टीम आई हुई है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस प्रकार से हम जंगल में आग लगी हुई को बचा सकते हैं, वहाँ के जानवरों को बचा सकते हैं, किस प्रकार से उनके लिए ये क्षतिग्रस्त होता है।
उधर बागेश्वर में वन अग्निशमन एवं रोकथाम परियोजना के तहत वनाग्नि की रोकथाम के लिए चयनित किए गए फायर फाइटर्स वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें वनाग्नि सुरक्षा उपकरण किट वितरित किए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि वनाग्नि के प्रभावी रोकथाम को लेकर जन जागरूकता के साथ ही जन सहभागिता का होना आवश्यक है।
जो हमारे वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, वॉलंटियर्स कुछ नामित किए गए हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया था, तो उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही साथ पूरे डिटेल में उनकी एक ट्रेनिंग जो है किस तरीके से वनाग्नि के संबंध में उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बुझाने के लिए उनके द्वारा कार्रवाई की जानी है, फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से कैसे की जानी है, उसके संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और उनको पूरा प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है। और हम लोग प्रयास यही करेंगे कि इस वर्ष जो है आग कम से कम लगे और यदि किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की घटनाएं की जाती हैं तो उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
बागेश्वर जिले में वनाग्नि की प्रभावी रोकथाम के लिए वन, पुलिस और आपदा कर्मियों के साथ ही हंस फाउंडेशन के सहयोग से 200 गांव के 1100 फायर फाइटर्स को जोड़ा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने में मददगार होगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को वर्ष 2023-24 के मुआवजा वितरण में हुई देरी के कारणों की जांच के आदेश दिए। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज देहरादून में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में हरियाणा की सुरुचि ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।